Now I know you're tired.
मुझे मालूम है कि आप थके हुए हैं.
So I want to have a shorter fast tonight.
इसलिए आज की रात में मैं एक छोटी कक्षा छोटी क्लास होगी.
I want to give you a personal exhortation.
मैं आपको एक व्यक्तिगत उत्साह की बात बताना चाहता हूँ.
We've been talking today about the preacher's personal life.
हमने बात की है प्रचारक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में.
He must have holy character.
कि एक प्रचारक के पास पवित्र चरित्र होना चाहिए.
We talked about the necessity of holiness.
हमने बात की कि पवित्रता की आवश्यकता के बारे में.
The foundation of holiness.
और पवित्रता की बुनियाद के बारे में.
The definition of holiness.
और पवित्रता की परिभाषा के बारे में.
The areas of holiness.
और पवित्रता के विभिन्न क्षेत्रों के बारे में.
We spoke briefly about the power for holiness.
और हमने बात की थी जल्दी से एक पवित्रता की सामर्थ्य के बारे में.
I want to talk tonight about the means of holiness.
और हम आज की शाम बात करना चाहते हैं पवित्रता के साधन की.
You know this subject well, I trust.
मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छी तरह जानते हैं.
There are public means and there are private means.
और एक है लोगों के सामने के साधन और एक है जो गुप्त में अकेले के साधन.
And if you're going to grow in holiness, you must give yourself to these practices.
और अगर आपको पवित्रता में बढ़ना है तो आपको ये जो रीतियां हैं इनमें अपने आप को दे देना है.
Our Christian life is a relationship with the living God.
और जो मसीही जीवन है वो जीवित परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है.
Through Jesus Christ,
यीशु के द्वारा,
by the power of the Holy Spirit,
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के,
according to the word of God,
परमेश्वर के वचन के द्वारा,
it is a personal relationship with a real person.
ये एक व्यक्तिगत संबंध है एक सच्चे व्यक्ति के साथ.
Jesus said this.
प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा.
John 17.
यूहन्ना उसके 17 अध्याय में.
This is eternal life.
ये अनंत जीवन है.
That they might know you, the one true God.
कि वो तुमको जान जाए वो सच्चे सच्चे परमेश्वर को.
And know Jesus Christ whom thou hast sent.
और यीशु मसीह को जिसने उसने भेजा है.
Paul's upset in Philippians 3.
और पौलुस कहता है फिलिपियों के 3 अध्याय में.
That I might know him.
ताकि मैं उसको जान सकूं.
Now we cannot see God.
हम परमेश्वर को तो नहीं देख सकते हैं.
We cannot see Christ.
हम मसीह को नहीं देख सकते.
God is invisible.
परमेश्वर अदृश्य परमेश्वर है.
God is eternal.
और वो अनंत परमेश्वर है.
God is in every place.
और वो प्रत्येक जगह पर उपस्थित है.
God is a spirit.
परमेश्वर आत्मा है.
A spirit of light.
और ज्योति की आत्मा.
And a spirit of love.
और प्रेम की आत्मा.
Of purity and of passion.
पवित्रता और प्रेम की चाहत के.
God's essence.
परमेश्वर का जो उसका जिस चीज से वो बना है.
God's nature.
और जो उसका जो चरित्र है.
He is a spiritual being of light and love.
वो एक आत्मिक प्राणी है जो कि ज्योति और प्रेम का बना हुआ है.
And he has revealed himself through his son.
और उसने अपने आप को अपने पुत्र के द्वारा हम पर प्रकाशित किया है.
Jesus said, if you have seen me, you have seen the Father.
यीशु मसीह ने कहा अगर तुमने मुझे देखा है तो तुमने पिता परमेश्वर को देख लिया.
Christian life is a relationship with a real person.
तो जो मसीही जीवन है वो एक सच्चे जन के साथ जीवित जन के साथ एक रिश्ता है.
We worship the living God.
हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं.
Through the person of Jesus Christ.
यीशु मसीह के व्यक्तित्व के द्वारा.
And the power of the Holy Spirit.
परमेश्वर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होकर के.
Paul said, we are the true circumcision.
पौलुस कहता है कि हम वास्तव में सच्चे खतना किए हुए लोग हैं.
That worship God in the Spirit.
जो परमेश्वर को आत्मा में होकर के आराधना करते हैं.
Glory in Christ Jesus.
और मसीह यीशु मसीह की महिमा में.
And put no confidence in the flesh.
और अपने देह पर कुछ भी हम भरोसा नहीं रखते.
In John chapter 4.
और यूहन्ना के 4 अध्याय में.
Jesus is speaking to the woman at the well.
और यीशु मसीह उस कुएं पे उस सामरी स्त्री से बात कर रहे हैं.
And he says, God is spirit.
और यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि परमेश्वर आत्मा है.
And those that worship him must worship him in spirit and in truth.
और जो उसकी आराधना करें उन्हें सच्चाई और आत्मा में होकर के उनकी आराधना करनी है.
God is seeking those that will worship him.
और परमेश्वर उनको ढूंढ रहा है जो उसको ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना करेंगे.
The church's highest calling.
और कलीसिया की सबसे ऊंची बुलाहट
their greatest privilege
उनके सबसे बड़ा सौभाग्य
is to worship God
कि वो परमेश्वर की आराधना करें
and to know God
और कि उसको जान जाए
and to love God
कि उसे प्रेम करें
and to fellowship with God
परमेश्वर के साथ संगति करें
through Jesus Christ
यीशु मसीह के द्वारा
by the power of the Spirit
पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा
now if you want to truly get to know a person
अगर आप किसी व्यक्ति को वास्तविक रीति से जानना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा उसे जानने के लिए
यू कैन लिसन टू जस्ट अदर पीपल टेल अबाउट दैट पर्सन
केवल आप दूसरे लोगों को नहीं सुन सकते कि वे उसके बारे में क्या बता रहे हैं आपको
यू मस्ट स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन योरसेल्फ
लेकिन आपको स्वयं उस व्यक्ति के साथ समय व्यतीत करना पड़ेगा
आई नो माई वाइफ
मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ
वी बीन मैरिड 40 इयर्स
हम आज 40 साल से विवाहित हैं
आई नो हर हार्ट एंड हर सोल
मैं उसके हृदय को और उसके प्राणों को जानता हूँ
वी हैव अ क्लोज रिलेशनशिप
हमारा उससे हमारा ये आपस में अच्छा सा नजदीकी संबंध है
God has made us one flesh.
परमेश्वर ने हमको एक देह बनाया है
Why?
क्यों
Because we have had close fellowship with one another.
क्योंकि हमारा एक दूसरे के साथ नजदीकी संगति रही है
We spend time together.
हम एक साथ समय व्यतीत करते हैं
We talk to one another.
हम एक दूसरे से बात करते हैं
We pray with one another.
हम एक दूसरे से प्रार्थना करते हैं
We love one another.
हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं
And I know her.
और मैं उसको जानता हूँ
I know her heart.
मैं उसके हृदय को जानता
हूँ I know her body.
मैं उसके शरीर को जानता
हूँ I know her soul.
मैं उसके हृदय में प्राण को जानता
हूँ Because we spend time together.
क्योंकि हम साथ में प्रार्थना व्यतीत करते हैं
And if you want to know God,
अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं
You must spend time with God.
तो आपको उसके साथ समय व्यतीत करना है
That is the means or the practices of holiness.
यही साधन है पवित्रता के लिए.
There are public practices and private practices.
ये लोगों के सामने की बातें हैं और एकांत में बातें हैं.
God has given two primary ways, two primary means in private that we know Him.
परमेश्वर ने दो तरीके से दो बातें दी हैं जिनके द्वारा हम उसको अकेले में एकांत में जान सकते हैं
And if you want to grow in holiness,
और अगर आप पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं
you must truly know God.
तो आपको वास्तव में परमेश्वर को जानना है
And the Spirit reveals Christ to us.
और पवित्र आत्मा ने मसीह को हमें दर्शाया है
In two primary ways.
दो तरीके से
What are those ways?
वो क्या तरीके हैं
The word
परमेश्वर का वचन
and prayer
और प्रार्थना
God speaks to you
और परमेश्वर आपसे बात करता है
You speak to God
और आप परमेश्वर से बात करते हैं
This is what a relationship is
यही आपस में एक संबंध है
And if you're going to grow in true holiness
अगर आप पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं
You must live in this book
और आपको इस किताब में जीना है
And you must live in prayer
और आपको प्रार्थना में जीना है
You must be disciplined in this word.
आपको इस वचन में आपको अनुशासित होना है
You need to tend to something there, brother.
No, I think. दिशा भी इन लोग सबको बुलाना ही अंदर वो लोग वेट कर रहे हैं बाइबल स्टडी के लिए इसलिए अभी शुरू हो गया उनसे कहीं अंदर आ जाएंगे
If you truly want to know God,
अगर आप वास्तविक रीति से प्रभु को जानना चाहते हैं परमेश्वर को जानना चाहते हैं
you must spend time with God.
तो आपको परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करना है
in the word of God,
परमेश्वर के वचन में
and in prayer.
और प्रार्थना में
You know that.
आप जानते हैं इस बात को ना
You have heard that.
आपने ये सुना है पहले
And I hope you are doing that.
और मैं ये आशा है कि आप ऐसा कर रहे हैं
But I want to exhort you again tonight.
मैं लेकिन आज की रात आपको पुनः उत्साहित करना चाहता हूँ
My great need.
हम मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता
is to get closer to God.
कि हम प्रभु की नजदीकी बन जाएं
My great need.
मेरी सबसे बड़ी आवश्यकता
is to experience the presence of God.
कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव कर सकें
The preacher's great need.
जो एक जो प्रचारक है उसकी सबसे बड़ी आवश्यकता है
is to see God,
कि वो परमेश्वर को देख सके
to know God,
कि उसको जान सके
to walk with God.
कि उसके साथ चल सके
And you do that, you live in this book,
अगर जब आप तब करते हैं जब आप इस पुस्तक में जिएंगे
and you live in prayer.
और आप प्रार्थना में जिएंगे
If you don't live in this book,
अगर आप इस पुस्तक में नहीं जिएंगे
If you don't live in prayer,
अगर आप प्रार्थना में नहीं जिएंगे
you cannot be a useful man,
तो आप परमेश्वर के लिए उपयोगी नहीं हो सकते
you cannot grow in true holiness. holiness.
तो आप सच्ची पवित्रता में नहीं जी सकते.
We must go up to the mountain.
हमें पर्वत की ओर जाना है.
We must see the glory of God.
हमें परमेश्वर की महिमा को देखना है.
In the person of Jesus Christ.
यीशु मसीह के व्यक्तित्व में.
And we're changed into the same image.
और हम उसी के समानता में नाई बनते चले जाते हैं.
From glory to glory.
अंश अंश करके महिमा से महिमा की ओर.
From one stage of Christ likeness to another stage.
और यीशु मसीह की नाई एक अंश से होकर के फिर धीरे धीरे और बढ़ते चले जाते हैं.
The preacher must live in this book.
जो लोग शिक्षा देते हैं उनको इस पुस्तक में जीना है.
The doctor studies his medical books.
जो डॉक्टर लोग होते हैं वैद्य लोग होते हैं अपनी किताब दवाई की किताब
को पढ़ते हैं. The lawyer studies his legal books.
जो वकालत करते हैं वो अपनी कानूनी किताबों को पढ़ते हैं.
The philosopher studies his philosophy books.
जो दर्शन शास्त्री होते हैं वो अपने दर्शन शास्त्री किताबों को पढ़ते हैं.
You must be a man of one book.
आपको एक किताब का जन होना है.
You must live in this book.
आपको इस किताब में जीना है.
You must meditate in this book.
आपको इस किताब पे मनन करना है.
Memorize this book.
आपको इस किताब को मुखाग्र याद करना है.
Not just to prepare messages.
केवल संदेश तैयार करने के लिए नहीं.
But for your own soul.
लेकिन अपने स्वयं के प्राण के लिए.
You must feed your soul.
आपको अपने प्राणों को खिलाना है.
If you don't walk with God.
अगर आप परमेश्वर के साथ नहीं चलेंगे.
If you don't feed yourself.
अगर आप अपने आप को नहीं भोजन देंगे.
You cannot feed others.
तो आप दूसरों को नहीं खिला सकते.
If your well is dry,
अगर आपका खुद का कुआं सूखा है,
you've got no water to give others.
तो आप दूसरे को पानी नहीं दे सकते.
You must fill your soul.
लेकिन आपको इसलिए अपने प्राणों को भरना है.
You must walk with God.
आपको परमेश्वर के साथ चलना चाहिए.
And the word of God.
परमेश्वर का वचन.
And prayer.
और प्रार्थना.
Look in Psalm 119.
और भजन संहिता 119 में देखिए.
Let's talk about the word of God.
आइए हम परमेश्वर के वचन के बारे में बात करें.
You already know this.
आप इसको जानते हैं पहले से ही.
Peter said, I want to stir you up by way of reminder.
और पत्रस कहता है मैं तुम्हें एक याद दिलाने के लिए तुम्हें उत्साहित करना चाहता हूँ.
Psalm 119.
अब भजन 119.
Very familiar passage.
बहुत जाना पहचाना अध्याय है ये.
Verse 9.
Navapad.
What is the relationship of the Word of God and holiness?
अच्छा नौ पद के अनुसार परमेश्वर के वचन और पवित्रता में क्या संबंध क्या है? नौ पद के अनुसार.
Can a young man keep his way pure?
एक जवान व्यक्ति अपने चाल को कैसे शुद्ध रख सकता है?
By keeping it according to the Word.
उसको अपने उसको वचन के अनुसार रखने के द्वारा चलने के द्वारा.
The Word is a light to our feet and a lamp to our path.
तेरा वचन मेरे पांव के लिए ज्योति और मार्ग के लिए दीपक है उज्याला है.
Word directs us in the way of holiness.
जो वचन है वो हमें पवित्रता के मार्ग की ओर लेके चलता है.
God has not left us alone.
परमेश्वर ने हमको अकेले नहीं छोड़ दिया.
He's given us his word.
उसने हमको अपना वचन दे दिया है.
And it directs us in the path of holiness.
और वो हमको पवित्रता की ओर लेकर के चलता है.
You don't have to guess what the will of God is.
आपको इस बात की अनुमान लगाने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर की इच्छा क्या है. जब आप परमेश्वर के वचन पढ़ते हैं
He will direct your path.
तो वो आपके मार्गों में आपके निर्देश देगा.
So the path of holiness is according to the word.
तो पवित्रता का मार्ग परमेश्वर के वचन के अनुसार है.
Verse 10.
दसवां पद.
With all my heart I have sought you.
मैंने अपने संपूर्ण हृदय से खोजा है.
You cannot have a divided heart.
आपका हृदय बटा हुआ नहीं हो सकता है.
One purpose.
एक ही उद्देश्य.
One desire.
एक ही इच्छा.
One passion.
एक ही चाह.
One goal.
एक ही लक्ष्य.
To know God.
परमेश्वर को हम
ध्यान
अपने संपूर्ण हृदय से
all of your days.
और सारे दिनों तक की.
And if that's your desire,
अगर वो आपकी इच्छा है
the word will guide you.
तो परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई करेगा.
Do not let me wander from your commandments.
अपने आज्ञाओं से मुझको अलग अलग ना जाने दे.
Verse 11.
11 पद.
Your word I have hid in my heart.
मैंने आपके वचन को अपने हृदय में संचित छिपा कर
रखा है. That I might not sin against
you. ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं.
What is the relationship of the word of God to holiness?
परमेश्वर के वचन का पवित्रता से क्या संबंध है?
It is the path of holiness to direct us.
वो पवित्रता का मार्ग है ताकि हमें निर्देश दे सके.
And if we hide it in our heart, it is the food that strengthens us.
और अगर हम उसको अपने हृदय में छिपा लें तो वो भोजन है जो हमें दृढ़ करता है, मजबूत करता है.
Lord, enlarge my heart, the psalmist said.
और जो जो भजनकार है वो कहता है प्रभु जी मेरे हृदय को और बड़ा कर दीजिए.
And I will run the way of your commandment.
और सब मैं आपके जो आज्ञाओं का जो मार्ग है उस पर दौड़ूंगा.
What is the relationship of the word of God and holiness?
परमेश्वर के वचन में और पवित्रता में क्या संबंध है?
It tells us the way to go.
वो हमें बताता है कि किस मार्ग पे हमें जाना है.
And it strengthens us for the journey.
और फिर वो हमें अपने मार्ग के रास्ते के लिए हमें मजबूत करता है.
If you got up this tomorrow morning,
अगर आप कल की सुबह उठे,
you don't need breakfast,
और आप नाश्ता ना करें,
you don't need lunch,
और आप दिन का खाना भी ना खाएं,
you don't need dinner,
और रात का खाना भी ना खाएं,
and you do that for 1 week,
और फिर एक हफ्ते तक आप ऐसे ही करें,
what will happen?
तो फिर क्या होगा आपको?
You get weak.
आप कमजोर हो जाएंगे.
You'll have no strength.
आपके पास कोई सामर्थ्य नहीं होगी.
You may know the path of holiness.
हो सकता है आपको पवित्रता का मार्ग मालूम है.
But you cannot run the way of holiness.
लेकिन आप उस मार्ग पे दौड़ नहीं सकते.
Now this is very simple.
ये बहुत साधारण है.
If you want to grow in holiness,
अगर आप पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं,
live in this book.
तो आपको इस पुस्तक में जीना है.
Now there are lots of good other preachers.
और बहुत सारे अच्छे प्रचारक हैं.
There are lots of good books.
बहुत सारी अच्छी किताबें हैं.
There are lots of good to listen to.
और बहुत सारे टेप है या सीडी है सुनने के लिए.
And that is important.
और वो जरूरी है.
But you must feed yourself.
लेकिन आपको अपने आप को खिलाना है.
If you don't feed yourself,
लेकिन अगर आप अपने आप को भोजन नहीं खिलाएंगे,
you will not grow.
तो आप नहीं बढ़ेंगे.
Now most people believe David wrote this song.
और बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि दाऊद ने ये भजन लिखा है.
But many people believe Ezra wrote this song.
और लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि एज्रा ने नबी ने ये भजन लिखा है.
We don't know who wrote it.
हमको नहीं मालूम किसने लिखा है.
But look in the book of Ezra.
लेकिन एज्रा की पुस्तक में देख लीजिए.
You know this verse.
आपको मालूम है ये पद.
Ezra was a young man.
Ezra एक जवान व्यक्ति था.
And chapter 7.
10.
Ezra 7.
7 and 10. Ezra उसका सातवां अध्याय.
Verse 8.
आठवां पद.
He came to Jerusalem in the fifth month in the seventh year of the king.
वो प्रथम माह के राजा के सातवें वर्ष के पांचवें महीने में यरूशलेम आया.
Look at verse 9.
और नौ पद में देखिए.
The first month he began to go up from Babylon on the first of the fifth month he came to Jerusalem.
क्योंकि प्रथम माह के प्रथम दिन तो वो बेबीलोन से चला और पांचवें माह के प्रथम दिन वो यरूशलेम पहुंचा.
Now look at the last part of the verse.
और उस पद का आखिरी हिस्सा देखिए.
Because the hand of God was upon him.
क्योंकि परमेश्वर का हाथ भला हाथ उस पर था.
To protect him.
उसको बचाने के लिए.
To guide him.
उसको अगुवाई करने के लिए.
And to empower him.
और उसको सामर्थ्य देने के लिए.
Verse 10.
दसवां पद.
Look at his practice.
उसके कार्यों को देखिए.
God was with him.
परमेश्वर उसके साथ था.
Why was God with him?
क्यों परमेश्वर उसके साथ था?
He set his heart to study the law of the Lord.
उसने अपना हृदय परमेश्वर की व्यवस्था का अध्ययन करने के लिए रखा.
And to do it.
और उसको करने के लिए.
And then to teach it to others.
और फिर उसको दूसरों को सिखाने के लिए.
This is the pattern for the preacher.
और ये जो है प्रचारकों के लिए यही एक तरीका है.
If you want God to be with you.
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ.
I'm not talking about gift.
मैं केवल दानों वरदान की बात नहीं कर रहा
हूं. I'm not talking about education.
मैं शिक्षा की भी बात नहीं कर रहा.
I'm not talking about your own earnestness.
मैं आपके खुद की गंभीरता की बात भी नहीं कर रहा हूं.
I'm talking about the power of God.
लेकिन मैं परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में बात कर रहा हूं. परमेश्वर की उपस्थिति के बारे में बात कर रहा हूं.
Protection of God.
परमेश्वर की सुरक्षा की बात कर रहा हूं.
Guidance of God.
परमेश्वर की अगुवाई की बात कर रहा हूं.
Preachers must have God with them.
प्रचारकों के साथ परमेश्वर होना चाहिए.
All Christians are indwelt by the Holy Spirit.
सारे मसीही लोगों के अंदर पवित्र आत्मा वास करता है.
But God is not with all preachers in this way.
लेकिन परमेश्वर प्रत्येक प्रचारकों के साथ इस तरह से नहीं होता है.
If you want God to be with you,
यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे,
directing you,
आपकी अगुवाई करते हुए,
protecting you,
आपको सुरक्षित रखते हुए,
providing for you,
आपके लिए उपलब्ध कराते हुए,
strengthening you,
आपको मजबूत करते हुए,
you must live in this book.
तो आपको इस वचन में रहना है.
Notice what it says.
ध्यान दीजिए क्या कहता है वो.
Verse 10.
दसवां पद में
he set his heart to study the word of God.
उसने अपना हृदय परमेश्वर की व्यवस्था को अध्ययन करने में लगा दिया.
His goal,
उसका उद्देश्य,
his purpose,
उसका लक्ष्य,
his passion,
उसका चाहत,
his desire,
उसकी इच्छाएं,
his highest priority,
उसकी सबसे ऊंची प्राथमिकता.
He set his heart to study the law of God.
उसने अपना हृदय परमेश्वर के विधियों को पढ़ने के लिए लगा दिया.
He lived in this book.
वो इस वचन में जी रहा था.
And he said, "Oh, how I love thy law."
और वो कहता है कि हे मैं कैसे आपके नियमों से प्रेम करता हूँ.
It is my meditation all the day.
और ये पूरे दिन के लिए मैं इस पे मनन करता रहता हूँ.
If you want God to be with you,
अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ
रहे, grow in holiness,
अगर आप पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं,
if you want to keep your way pure,
अगर आप अपने मार्गों को शुद्ध रखना चाहते हैं,
you must live in this book.
तब आपको इस वचन में जीना है.
John 17.
यूहन्ना उसका 17वां अध्याय.
Jesus's prayer.
यीशु मसीह की प्रार्थना.
Look at John 17.
यूहन्ना उसका 17वां अध्याय देख लीजिए.
What is the relationship between truth and sanctification?
सत्य के बीच में और पवित्र होने के बीच में, शुद्धिकरण के बीच में क्या संबंध है?
John 17.
यूहन्ना उसका 17वां अध्याय.
You know this verse.
आप जानते हैं इस पद को.
Where is the verse?
Yeah,
verse 17. Look at verse 16.
16 पद को
देखिए. They are not of the world, even as I am not of the world.
वे संसार के नहीं है जैसे कि मैं भी संसार का नहीं हूँ.
God has brought us out of the world.
परमेश्वर ने हमको संसार से बाहर निकाला है.
He has delivered us from the dominion of devil.
उसने हमें शैतान के राज्य से छुड़ा लिया है.
He's put us in the kingdom of his beloved son.
उसने हमें अपने प्रिय पुत्र के राज्य में डाल दिया है.
Verse 17.
अब 17 पद.
Sanctify them in truth.
सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर.
Your word is truth.
तेरा वचन सत्य है.
How do we become more holy?
हम कैसे और पवित्र बन सकते हैं?
We are sanctified according to the truth.
हम सत्य के द्वारा पवित्र किए जाते हैं.
How does Jesus cleanse his church?
यीशु मसीह कैसे अपनी कलीसिया को शुद्ध करता है?
Ephesians chapter 5.
इफिसियों का 5वां अध्याय.
By the washing of the water with the word.
और पानी के उस सत्य वचन के द्वारा धोने के द्वारा.
If you want to grow in holiness.
यदि आप पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं.
You gotta live in this book.
तो आपको इस पुस्तक में जीना पड़ेगा.
Read this book.
इस पुस्तक को पढ़िए.
Every day.
प्रतिदिन.
Study this book.
इसका अध्ययन कीजिए.
Every day.
प्रतिदिन.
Meditate on this book.
इसे मनन कीजिए. इसके साथ.
Every day.
प्रतिदिन.
You've got one calling.
आपके पास एक ही बुलाहट है.
To know God.
परमेश्वर को जानना.
And to preach His truth.
और उसके सत्य को प्रचार करना.
You can't do other things.
आप बाकी चीजें कर सकते हैं.
You must be a man of one thing.
आप केवल एक ही चीज के व्यक्ति बन सकते हैं.
You must live in this book.
आपको इस किताब में जीना है.
If you don't live in this book,
अगर आप इस किताब में नहीं जिए,
you'll not know the way to go.
तो आपको नहीं मालूम आप किस मार्ग पर चलना
है. If you don't live in this book,
अगर आप इस किताब में नहीं जिएंगे,
you cannot be cleansed from sin.
तो आप पाप से शुद्ध नहीं हो सकते.
If you don't live in this book,
अगर आप इस पुस्तक में नहीं जिएंगे,
you'll not have spiritual strength.
तो आपके पास आत्मिक सामर्थ्य नहीं रहेगी.
First Peter,
पहला पत्र,
chapter 2,
दूसरा अध्याय.
Very familiar verse.
बहुत ही जाना पहचाना पद है.
Chapter 2, verse
2. पहला पत्र दूसरा अध्याय का दूसरा पद.
Like a newborn babe long for the pure milk of the word.
नवजात शिशु के समान शुद्ध आत्मिक दूध के लिए लालित रहो.
So that you may grow in respect to salvation.
जिससे कि तुम उद्धार में बढ़ते जाओ.
Do you give food to your children?
क्या आप अपने बच्चों को भोजन देते हैं?
You love your children.
आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं.
You want them to be healthy.
आप चाहते हैं कि वो और भी अधिक पोषक बने.
You want them to grow.
और आप चाहते हैं कि वो बढ़े और स्वास्थ्य बने.
How do they grow?
वो कैसे बढ़ेंगे?
You give them food.
आप उनको भोजन देते हैं.
You don't give them food.
अगर आप उनको खाना नहीं देंगे,
they will not grow.
तो वो नहीं बढ़ेंगे.
You don't give them food.
अगर आप उनको खाना नहीं देंगे,
they will be sick.
तो फिर वो बीमार हो जाएंगे.
You don't give them food.
अगर आप उनको खाना नहीं देंगे,
they will be weak.
तो वे कमजोर हो जाएंगे.
If you want to grow,
अगर आप बढ़ना चाहते हैं,
you've got to take the word.
तो आपको परमेश्वर का वचन लेना है.
Spiritual babies take milk.
और जो आत्मिक बच्चे हैं वो दूध लेते हैं.
But you don't give a baby milk forever.
लेकिन आप किसी बच्चे को हमेशा तक दूध नहीं देते.
You begin to give him soft food.
फिर उसके बाद फिर आप उसको खाना देना शुरू करते हैं मुलायम खाना.
Then he can take meat.
और फिर क्या, फिर वो मांस भी खा सकता है.
And then he becomes stronger.
फिर वो और मजबूत हो जाता है.
How does he grow?
वो कैसे बढ़ता है?
He takes in spiritual food.
वो आत्मिक भोजन को अंदर लेता है.
Now you already know this.
आप जानते हैं इस बात को पहले से ही.
I know you know this.
मुझे मालूम है कि आप इस बात को जानते हैं.
You're a preacher.
क्योंकि आप लोग प्रचार के कई लोग.
God's called you to preach.
और आप लोग का काम है प्रचार करना.
But many preachers only study the Bible to prepare sermons.
लेकिन कई प्रचारक लोग होते हैं वो केवल वचन को तैयार करने के लिए संदेश तैयार करने के लिए अध्ययन करते हैं.
You must read the Bible for your own soul.
लेकिन आपको बाइबल का अध्ययन करना अपने स्वयं के प्राणों के लिए हृदय के लिए.
Your first calling is not to serve God, it's to know God.
आपकी पहली बुलाहट ये नहीं है कि आप परमेश्वर की सेवा करें लेकिन पहली बुलाहट ये है कि आप परमेश्वर को जान जाएं.
Do you read your Bible?
क्या आप अपनी बाइबल को पढ़ते हैं?
Do you discipline your time?
क्या आप अपने समय का अनुशासन करते हैं?
Do you have a plan?
क्या आपके पास कोई योजना है उसके लिए?
Many preachers are like this.
अब कई प्रचारक लोग या कई मसीह लोग
इस तरह के होते हैं.
सुबह उठते हैं वो लोग.
Oh Lord.
हे प्रभु.
Speak to me.
मुझसे बात कीजिए.
Amen. One minute.
एक मिनट एक क्षण.
One verse.
एक पद.
One moment.
एक क्षण.
You can't grow like that.
आप उस तरह से नहीं बढ़ सकते.
You must have a plan.
आपके पास कुछ योजना होनी चाहिए.
You need to be reading through the word of God.
आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना है.
Old Testament.
पुराना नियम.
New Testament.
नया नियम.
Gospels.
सुसमाचार.
Epistles.
और पत्र.
Psalm.
भजन.
Proverbs.
नीति वचन.
Reading through the whole word of God.
उन सब में से परमेश्वर के संपूर्ण वचन से पढ़ना है.
If you go over here in the morning and eat one little bean for breakfast.
अगर आप सुबह यहाँ पर जाए नाश्ता करने के लिए और केवल एक छोटा सा चना खाएं
you will not grow.
तो आप बड़े नहीं हो सकते.
If you come back at noon and eat one little piece of bread,
और फिर दिन में वापस आकर के एक आप एक ब्रेड की छोटी सी टुकड़ा खा लें
you will not grow.
आप नहीं बढ़ेंगे.
You are a preacher.
आप एक प्रचारक हैं.
You have one calling.
आपके पास एक ही बुलाव है.
To preach this book.
परमेश्वर के वचन को
जानना. To know God.
परमेश्वर को जानना.
To live in this book.
उसके वचन में जीना.
You can't be lazy.
आप आलसी नहीं हो सकते.
Lazy preachers. The curse of the church.
और जो कलीसिया के लिए श्राप है वो लोग जो आलसी प्रचारक हैं.
Don't be lazy.
आलसी मत बनिए.
Live in this book.
इस पुस्तक में जिए.
That's how you become holy.
और ऐसे ही आप पवित्र बनते हैं.
That's the first practice, the first means of grace.
और ये पहला साधन है, ये पहली प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पवित्र बनते हैं.
Now, we have a secret camera on your life for the last month.
अगर हमारे पास एक गुप्त कैमरा होता जो आपके जीवन के ऊपर लगा होता पिछले महीने के लिए.
And we put it right up here.
और हम उसको यहाँ ऊपर डाल देते.
What would we see?
तो हम क्या देखते हो उस वीडियो में?
Would we see you reading your Bible?
क्या हम देखते हैं उसमें कि आप अपनी बाइबल का अध्ययन कर रहे हैं?
Many preachers.
बहुत सारे प्रचारक लोग.
They're out serving God.
वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं.
They're out preaching.
वो बाहर प्रचार कर रहे हैं.
They're running around everywhere.
वो हर जगह दौड़ रहे हैं.
And that is important.
और वो जरूरी है.
But if you run around everywhere and you don't feed your soul, it's useless.
लेकिन अगर आप हर जगह दौड़ते रहें लेकिन अपने स्वयं के प्राण को ना खिलाएं तो फिर व्यर्थ है.
You can't be like Martha, you must be like Mary.
आप मार्था के समान नहीं बन सकते, आपको मरियम के समान बनना है.
You remember the story.
क्या आपको याद है वो
Martha was serving the Lord.
मार्था जो है प्रभु की सेवा कर रही थी.
She was very busy.
वो बहुत व्यस्त थी.
She was in the kitchen.
और वो किचन में लगी हुई थी.
She was hot.
और वो बहुत गर्म थी.
No one's helping her.
कोई उसकी मदद नहीं कर रहा.
She's very frustrated.
और वो काफी खिसिया रही.
Where's Mary?
मरियम कहाँ है?
She's sitting at Jesus' feet.
और वो यीशु के पैरों पे बैठी
हुई है. Listening to his word.
उसके शब्द को सुन रही है.
Martha comes out.
मार्था बाहर आती है.
Jesus, Jesus.
यीशु मसीह, यीशु मसीह.
Nobody will help me.
कोई मुझे सहायता नहीं कर
रहा. Tell Mary to help me.
मरियम से कही मेरी सहायता करे.
What did Mark Jesus say?
यीशु मसीह ने क्या कहा?
Martha, Martha.
Martha, Martha.
You're worried and bothered about too many things.
तुम बहुत सारी चीजों के बारे में चिंता कर रही हो.
A few things are necessary.
और कुछ चीजें जो जरूरी हैं.
Really only one.
और में से एक ही है.
Mary's chosen the good part.
और मरियम ने जो अच्छी हिस्सा है अच्छा हिस्सा उसने चुन लिया.
And it will not be taken away from her.
और वो जो अच्छा हिस्सा उसने चुन लिया वो उसे नहीं लिया जाएगा.
We must serve God.
हमें परमेश्वर की सेवा करनी है.
We must preach.
हमें प्रचार करना है.
God calls us to serve.
परमेश्वर ने हमें बुलाया सेवा करने के लिए.
But if you don't sit at his feet.
लेकिन अगर उसके चरणों पे नहीं बैठेंगे, अगर आप उसके चेहरे को नहीं देखेंगे, अगर आप उसके कान को आवाज को नहीं सुनेंगे, तो आपका प्रचार व्यर्थ
है।
कोई सामर्थ्य,
no authority,
कोई अधिकार,
no fruitfulness,
कोई फल नहीं।
You must live in the presence of Jesus,
आपको यीशु मसीह की उपस्थिति में जीना है,
listening to his word,
उसके वचनों को सुनना है।
Then you serve God.
फिर आप उसकी सेवा करिए।
Are you living in this book?
क्या आप इस पुस्तक में जी रहे हैं?
If I say this,
अगर मैं आपसे ये कहूं,
Nehemiah,
Nehemiah,
Job,
Ayub,
Jeremiah,
Yeremiah.
Have you read those books?
क्या आपने वो पुस्तकें पढ़ी हैं?
Do you live in those books?
क्या आप उन पुस्तकों में जीते हैं?
Are you reading through the word of God?
क्या आप परमेश्वर के वचन में होकर के पढ़ रहे हैं?
You need a plan.
आपके पास एक योजना होनी चाहिए।
I'll tell you my plan.
मैं आपको बताता हूँ मेरी योजना।
Just as an example.
सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर।
When I'm not traveling.
जब मैं यात्रा में नहीं होता हूँ।
When I'm at home.
जब मैं घर में होता हूँ।
I'll read 5 or 6 chapters in the Bible.
मैं 5 या 6 अध्याय बाइबल में से पढ़ता हूँ।
I'll read a psalm.
मैं एक भजन पढ़ता हूँ।
I'll read a passage in the Old Testament.
मैं एक पुराने नियम से एक स्थल को पढ़ता हूँ।
Before the book of Psalms.
भजन संहिता भजन पढ़ने से पहले।
Then I'll read a chapter in the Old Testament after the book of Psalms.
फिर मैं एक अध्याय पढ़ता हूँ जो भजन के बाद होता है, भजन संहिता के बाद।
I'll read 3 chapters in the New Testament.
फिर मैं नए नियम से 3 अध्याय पढ़ता हूँ।
From the Gospels and the Book of Acts.
और सुसमाचार से और पेटर के काम से।
From Paul's epistles.
और पौलुस के पत्रियों से।
And from the general epistles.
और फिर जो ऐसी पत्रियां हैं।
And I read consecutively through these.
और फिर मैं उनसे होकर के लगातार एक के बाद एक उनको पढ़ता
हूँ। So I'm moving through the Word of God.
और फिर उस तरह से मैं परमेश्वर के वचन में चलता जाता बढ़ता
जाता हूँ। You may not be able to read that much.
हो सकता है कि आप उतना नहीं पढ़ सकते।
Maybe you could read 3 chapters.
हो सकता है आप केवल 3 अध्याय पढ़ सकते हैं।
Read a psalm.
एक भजन पढ़िए।
A passage from the Old Testament.
एक पुराने नियम से अध्याय पढ़िए।
A passage from the New Testament.
एक नए नियम से अध्ययन पढ़िए, स्थल पढ़िए।
Think about it.
उसके बारे में सोचिए।
Meditate upon it.
उसके ऊपर विचार करिए, मनन कीजिए।
And you see the whole picture of scriptures together.
फिर आप देखिए कैसे वो पूरा जो वचन है कैसे एक चित्र के रूप में बैठता है।
If you don't have a plan,
अगर आपके पास योजना नहीं है,
if you're not willing to take the time,
अगर आप समय देने के तैयार नहीं है,
you'll not really grow.
तो आप बढ़ेंगे नहीं।
You must have a plan.
आपके पास एक योजना होनी चाहिए।
And you must read your Bible.
और आपको अपना वचन पढ़ना है।
Do you read your Bible?
क्या आप अपना वचन पढ़ते हैं?
You have a high calling.
आपके पास एक बड़ी बुलाहट है।
You have a great responsibility.
आपके पास एक बड़ी जिम्मेदारी है।
You have a terrible judgment waiting for you.
आपके लिए एक भयानक न्याय इंतजार कर रहा है आपके लिए।
If you're going to be a preacher,
अगर आप प्रचारक बनेंगे,
your accountability is very high.
आपके जो उत्तरदेही है, जवाबदेही है, वो बहुत ऊंची है।
You got one book in your life.
आपके पास आपके जीवन के लिए सिर्फ एक ही पुस्तक है।
This is like an ocean without a bottom and without side.
ये एक ऐसे समुद्र के समान है जिसके कोई तल नहीं है, सतह नहीं है और जिसके कोई किनारा नहीं है।
I've been reading this book for 42 years.
मैं 42 वर्ष से इस पुस्तक को पढ़ता आ रहा हूँ।
And I feel like I'm in the first grade.
और मुझे अभी ऐसा लगता है कि मैं केवल पहली ही क्लास में हूँ।
You must live in this book.
आपको इस पुस्तक में जीना है।
It was said of old John Bunyan who wrote Pilgrim's Progress.
और ये एक प्रभु के सेवक जिनका नाम जॉन बनियन था, जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम था Pilgrim's Progress.
When you poked him, he bled the Bible.
उसके लिए कहा जाता कि अगर तुम उसको अगर किसी चीज से चुभोगे तो उसके अंदर से खून बाइबल जैसा खून बहता है।
And if you read Pilgrim's Progress,
अगर आपने कभी वो पुस्तक पढ़ी है Pilgrim's Progress,
it's full of the Bible.
वो जो किताब है वो पूरी बाइबल से भरी हुई है।
He was put in prison.
उसको जेल में डाल दिया गया।
It was the purpose of God.
वो परमेश्वर का उद्देश्य था।
Because when he was in prison,
क्योंकि जब वो बंदी गृह में था,
they let him read his Bible.
तो उन्होंने उसको वचन पढ़ने दिया।
And he wrote a book.
और उसने एक किताब लिखी।
And it's the most famous book in all the world, second to the Bible.
और बाइबल के बाद सारे संसार में बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है।
And it's full of the Bible.
और वो वचन से भरी है।
Why?
क्यों?
He lived in the Bible.
क्योंकि वो बाइबल में जीता था।
You've got one book.
आपके पास एक ही पुस्तक है।
One life.
एक जीवन।
One calling.
एक बुलाहट।
One judgment.
एक न्याय।
Live in this book.
इस पुस्तक में जिए।
Number two.
दूसरी बात.
You must live in prayer.
आपको प्रार्थना में जीना है.
If you want to be holy.
अगर आप पवित्र बनना चाहते हैं.
You must live in prayer.
तो आपको प्रार्थना में जीना है.
When I really want to know my wife.
अब जब मैं अपनी पत्नी को वास्तविक बहुत अच्छी तरह जानना चाहता हूँ.
I get away from other people.
तो मैं दूसरे लोग से अलग हट जाता हूँ.
I shut the door.
मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ.
And I'm alone with my wife.
और जब मैं अपनी पत्नी के साथ अकेला हूँ.
And that's when you really get to know someone.
और जब आप अकेले किसी के साथ होते हैं तभी आप उस व्यक्ति को जान सकते हैं अच्छी तरह से.
Let's look at several verses.
आइए हम कई पदों को देख लेंगे.
Matthew chapter 6.
मत्ती उसका छठा अध्याय.
Very familiar verse.
हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं उस पद को.
The Sermon on the Mount.
पहाड़ी उपदेश.
Jesus is describing the character of the citizens of the kingdom.
यीशु मसीह जो राज्य के जो नागरिक हैं उनके चरित्र का वर्णन वहाँ पे कर रहे हैं.
Their character and their conduct.
उनका चरित्र और उनका व्यवहार.
This is not how you earn salvation.
आप इस तरह से अपना उधार नहीं पाते हैं कमाते हैं.
This is the characteristics of those that are saved.
ये उन लोगों के गुण हैं जो लोग बच चुके हैं.
And what is their characteristic?
और उनके क्या गुण हैं क्या चिन्ह हैं.
Notice verse 5.
अब पांच छठा अध्याय का पांच पद देखिए.
Very familiar verse.
बहुत हम इसे जानते हैं अच्छी तरह से.
When you pray.
जब तुम प्रार्थना करो.
You are to not be like the hypocrites.
तब तुम पाखंडियों के समान ना बनो.
But they love to stand and pray in the synagogues and on the street corners.
क्योंकि वो लोग जो हैं लोग दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों की मोड़ पे खड़े होकर प्रार्थना करते हैं.
Why?
क्यों?
What does it say?
क्यों क्या कह रहे हैं यहाँ पे?
That they might be seen by men.
ताकि लोग उनको देख सके कि वो क्या कर रहे हैं.
They love the approval of men.
वो लोगों के द्वारा प्रशंसा पसंद करते हैं.
Impress men.
वो लोगों को प्रभावित करना मांगते हैं.
Jesus said that is a hypocrite.
यीशु मसीह ने कहा कि वो एक पाखंडी है.
Many preachers pray in public.
बहुत सारे प्रचारक लोग लोगों के सामने तो प्रार्थना करते हैं.
They pray many beautiful prayers.
और बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं.
And certainly we are to pray in the church.
और निश्चय सही बात है कि हमें कलीसिया में लोग लेकिन आपकी प्राथमिकता क्या है वो यीशु मसीह यहाँ पे क्या
करते
हैं.
When you pray,
जब तुम प्रार्थना करो
where do you go?
तो तुम कहाँ जाओगे.
Go into your inner room.
तुम अपने भीतरी कक्ष में जाओ.
Close the door.
दरवाजा को बंद कर लो.
Pray to your father who is in secret.
और अपने पिता से प्रार्थना करो जो गुप्त में है.
And your father in secret will hear you.
और जो पिता जो गुप्त में है वो तुम्हें सुनेगा.
Holy men,
पवित्र लोग
pray to God in secret.
परमेश्वर से गुप्त में प्रार्थना करते हैं.
Not one minute.
एक क्षण के लिए नहीं.
If you love someone,
यदि आप किसी से प्रेम करते हैं,
you want to spend time with that person.
तो आप उस जन के साथ समय व्यतीत करना मांगते हैं.
You want to be with that person.
आप उस व्यक्ति के साथ रहना मांगते हैं.
You want to know that person.
आप उस व्यक्ति को जानना चाहते हैं.
Many preachers are too busy.
और कई लोग अक्सर बहुत व्यस्त हो जाते हैं.
They're just hopping around like rabbits.
वो यहाँ से वहाँ हर जगह खरगोश की तरह कूद रहे हैं.
But God is looking for people to worship him.
लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो उसकी आराधना करेंगे.
They will go into the inner chamber.
और वो लोग जो अंदर जाएंगे अंदर के कक्ष
Shut the door.
और अपना दरवाजा बंद करेंगे.
Pray to the Father in secret.
और जो उस पिता जो कि गुप्त में है उससे प्रार्थना करेंगे.
If you are a child of God,
अगर आप परमेश्वर के संतान हैं,
your number one priority,
तो आपकी पहली प्राथमिकता
is to know God.
कि आप प्रभु को जान जाएं.
Where do you know God?
कैसे आप परमेश्वर को जानते हैं.
In secret.
अकेले में गुप्त में.
Look in Mark.
मरकुस में देखिए.
Chapter 1.
पहला अध्याय.
Jesus taught the importance of secret prayer.
यीशु मसीह ने गुप्त प्रार्थना की महत्व को सिखाया.
मार्क चैप्टर 1.
मार्कुस का पहला अध्याय.
जीसस प्रैक्टिस्ड द हैबिट ऑफ सीक्रेट प्रेयर.
यीशु मसीह ने गुप्त प्रार्थना की आदत को स्वयं उन्होंने सब स्वयं किया उनकी आदत थी.
नोटिस मार्क चैप्टर 1.
देखिए मार्कुस का पहला अध्याय.
वर्स 32.
उसका 32 पद.
व्हेन द इवनिंग केम.
जब संध्या आई.
दिस वाज आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ मिनिस्ट्री.
और ये बड़ा लंबा दिन सेवकाई के लंबे दिन के बाद की बात है. ये
जीसस वाज टायर्ड.
यीशु मसीह थके हुए थे.
द इवनिंग केम.
और जब शाम आई.
एंड द सन वेंट डाउन.
और जब सूर्य प्राप्त हो गया
एंड दे बिगन टू ब्रिंग हिम ऑल दैट वर इल एंड वर डीमन पोसेस्ड
तो लोग उसके पास बहुत सारे बीमारों और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित लोगों को लाने लगे
ही वाज टायर्ड
वो थका हुआ था
ही वाज हंग्री
वो भूखा था
ही वाज वेरी
और वो थके हुए थे
बट ही कंटिन्यूड टू मिनिस्टर
लेकिन फिर भी वो सेवकाई करते
रहे वर्स 33
बट 33 पर
द होल सिटी गैदर्ड एट द डोर
और सारा नगर द्वार पे जमा हो गया
एंड ही डिडंट सेंड देम अवे
और उन्होंने उनको भगा नहीं दिया वहां से
वर्स 34
चौथे पद
ही हील्ड मेनी दैट वर इल विद डिजीज
उन्होंने बहुत लोग जो बीमार थे उनको चंगा किया बहुत से दुष्ट आत्माएं निकाल दी
इज नॉट परमिटिंग द डीमंस टू स्पीक
लेकिन फिर भी वो दुष्ट आत्माओं को बोलने की अनुमति नहीं देता
था ही टोटली एग्जॉस्टेड
वो पूरी तरह थका हुआ है
ऑल डे बीन प्रीचिंग
पूरे दिन वो प्रचार करता
था एंड लेट एट नाइट
और देर रात में
लुक एट द नेक्स्ट वर्स
अगले पद को पढ़िए
In the early morning,
भोर को,
while it was still dark,
जब अंधेरा ही था,
he got up,
वो उठा,
and he left the house,
अपना घर छोड़ दिया,
and he went to a lonely place,
और एक एकांत में जाके प्रार्थना कर,
and he was there praying,
और वहाँ प्रार्थना कर रहा था.
Jesus was a man.
यीशु मसीह एक मनुष्य था.
He was a sinless man.
वो एक पाप रहित निष्पाप व्यक्ति था.
But he had the weaknesses of humanity.
किंतु मानवता की जो कमजोरियां हैं वो उसके अंदर थी.
He became hungry.
वो भूखा हुआ.
He became tired.
वो थक गया.
He became weary.
और वो उसे थकान लगी.
He was often so tired he fell asleep.
और कई बार वो इतना थका हुआ होता था कि उसको नींद आ जाती थी.
In the middle of a storm.
और आंधी तूफान के बीच में
the boat's going up and down.
जब नाव ऊपर नीचे हो रही है.
He fell asleep.
और वो नींद आ गई उसको वहाँ पे.
Totally exhausted.
और पूरी तरह से थका हुआ है.
The next morning.
दूसरी सुबह.
Early in the morning.
और बहुत भोर जल्दी सुबह.
While it was still dark.
जब उस समय अंधेरा ही था
he got up.
वो उठा
he was tired.
वो थका हुआ था
he was sleepy.
वो नींद आई थी उसको
Probably his head was sluggish.
और हो सकता है उसका मस्तिष्क दिमाग की थकानी कर रहा
था
वो वास्तविक सच्चा पुरुष था
Sinless.
वो लेकिन दुकान रहे
But he became weary.
और इसीलिए वो थका मानता था
Why did he pray?
क्यों उसने प्रार्थना की?
He was the son of God.
वो तो परमेश्वर का पुत्र है.
Why did he pray?
क्यों उसने प्रार्थना की?
He was equal to God.
वो तो परमेश्वर के समान था.
Why did he pray?
क्यों उसने प्रार्थना की?
He had the power of God.
उसके पास तो परमेश्वर की सामर्थ्य
थी. Why did Jesus pray?
क्यों यीशु मसीह ने प्रार्थना की?
Two reasons.
दो कारण.
He loved his father.
वो अपने पिता से प्रेम करता था.
And he needed his father.
और उसे अपने पिता की जरूरत थी.
He was dependent upon his father.
वो अपने पिता पर निर्भर था.
And he didn't do his own will.
और उसने खुद की इच्छा स्वयं की इच्छा नहीं
Did the will of his father.
अपने पिता की इच्छा को पूरी की
And he loved his father.
और अपने पिता से प्रेम करता
And he needed his father.
और अपने पिता को जानता
था. Because he loved him.
उसके अपने पिता की आवश्यकता थी उसे प्रेम करता था.
And because he needed him.
और क्योंकि उसे उसकी आवश्यकता थी.
He got up in the morning.
इसलिए वो सुबह उठा.
He left other people.
और बाकी लोगों को छोड़ दिया.
He went to a lonely place.
और एक एकांत में चला गया.
Got on his knees.
अपने घुटनों पे हो गया.
And was there praying.
और वहाँ पे प्रार्थना कर रहा था.
His first priority.
उसकी पहली प्राथमिकता.
Was to commune with his father.
कि अपने पिता से वो संगति करे अपने पिता के साथ आराधना संगति करे कि अपने पिता के मुख को ढूंढे
एंड बिकॉज ही नीडेड हिज फादर
और क्योंकि उसे अपने पिता की आवश्यकता थी
ही वाज अ डिपेंडेंट एंड ओबीडिएंट सन
वो उस पे वो निर्भर था और वो एक आज्ञाकारी पुत्र था
ही टॉट The importance of secret prayer.
उसने गुप्त प्रार्थना की आवश्यकता या महत्वपूर्णता को के बारे में सिखाया
He practiced the habit of secret prayer.
और उसने उस जो आदत थी गुप्त प्रार्थना की उसको किया भी उसने
And look in the Gospel of Luke.
और लूका के उसमें देखिए
And chapter 11.
लूका के सुसमाचार उसके 11 पद में देखिए
It happened verse 1 when Jesus was praying in a certain place.
और जब यीशु मसीह एक जगह प्रार्थना कर रहे थे
When he finished, one of his disciples said, Lord, teach us to pray just as John taught his disciples.
और यीशु शिष्य ने कहा जैसे यूहन्ना ने अपने शिष्य को प्रार्थना करना सिखाया हमें भी सिखा
How do you influence people?
आप लोगों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं?
Your example.
अब अपने उदाहरण के द्वारा.
They saw him praying.
उन लोगों ने उसे प्रार्थना करते देखा.
And they knew something was important.
और उनको मालूम चला कि कुछ महत्वपूर्ण था.
He's the teacher and the master.
वो शिक्षक है और वो मालिक है.
He often leaves us and goes alone.
लेकिन वो अक्सर हम लोग को छोड़ करके अकेला चला जाता है.
And they often found him alone.
और उन्होंने अक्सर उसको अकेले पाया.
And they began to think.
और वो सोचने लगे.
If our master needs to be alone with God.
अगर हमारे स्वामी को परमेश्वर के साथ अकेले होने की जरूरत है.
We need to be alone with God.
तो हमें भी परमेश्वर के साथ अकेले रहने की जरूरत है.
He taught them the importance of prayer.
उसने उनको प्रार्थना की आवश्यकता के बारे में सिखाया, महत्व के बारे में.
He practiced the importance of prayer.
और उसने प्रार्थना की आवश्यकता को उसने अभ्यास भी किया.
He was an example of the habit of prayer.
और उस प्रार्थना की आदत का उसने एक उदाहरण भी उनके सामने रखा.
When a man is born again,
जब एक व्यक्ति पुनः जन्म होता है,
God gives him a spirit of adoption.
जब एक व्यक्ति का नया जन्म होता है तो परमेश्वर उसको अपना बना लेता है.
Abba, Father.
और वो फिर कहता है कि अब्बा और पिता.
But a little child, when he is born,
लेकिन जब एक छोटा बच्चा जब पैदा होता है,
he can only make baby sound.
वो केवल बच्चों जैसी आवाजें निकालता है. और फिर धीरे धीरे वो अम्मा पिताजी बोलना सीखता है.
And he begins to learn to speak.
और फिर वो बोलना सीखता है धीरे करके.
Because he has a spirit of prayer.
क्योंकि उसके अंदर प्रार्थना की आत्मा है.
It's like a breath.
ये एक सांस के समान है.
If the baby is alive, he's breathing.
अगर एक बच्चा जीवित है तो फिर वो सांस तो लेगा ही लेगा.
If a man is born again, he has spiritual breath.
अगर कोई व्यक्ति जिसका नया जन्म हुआ है वो उसके अंदर आत्मिक श्वास होगी.
But it's like a little baby.
वो एक छोटे बालक के समान होगा.
If he doesn't know what to say.
अगर उसको नहीं मालूम कि क्या बोलना है.
And his vocabulary is very limited.
हो सकता है उसके शब्द बहुत कम हो.
And his language is very immature.
हो सकता है उसकी भाषा बहुत अपरिपक्व हो.
And so he needs to pray.
और इसलिए उसको प्रार्थना करने की आवश्यकता
है. Lord, teach us to pray.
हे प्रभु मुझे सिखा, हमें सिखा कि हम कैसे प्रार्थना करें.
They had seen John teach his disciples to pray.
उन्होंने देखा था कि यूहन्ना ने अपने शिष्य को प्रार्थना करना सिखाया है.
They saw Jesus pray.
उन्होंने देखा कि यीशु मसीह स्वयं
And they understood this was important.
और वो समझ गए कि ये महत्वपूर्ण है.
And they said, Lord, teach us to pray.
और उन्होंने कहा, हे प्रभु मुझे हमें सिखा प्रार्थना करने के.
Jesus taught them the content of prayer.
यीशु मसीह ने उनको उस प्रार्थना में क्या करना है, प्रार्थना की सामग्री के बारे में सिखाया.
Now we often repeat these prayers, these words.
और अक्सर हम इन प्रार्थना के शब्दों को दोहराते हैं.
And we should repeat these very words.
और हमको इन शब्दों को दोहराना जरूर चाहिए.
But Jesus is teaching something deeper than just saying the word.
लेकिन यीशु मसीह केवल इन शब्दों को कहने के बजाय उससे और भी अधिक कुछ गहरी बातों को सिखा रहे हैं.
We don't want to worship God with our lips and have our hearts far away.
हम परमेश्वर को केवल अपने मुख और अपने होठों के द्वारा नहीं आराधना करना चाहते हैं और हमारा हृदय दूर हो.
You are familiar with this prayer.
आप इस प्रार्थना से आप जानते हैं, आप इसको अच्छी तरह से.
Where does it begin?
कहाँ आरंभ होता है?
Praise and worship of God.
परमेश्वर की आराधना और उपासना के द्वारा.
नंबर टू,
दूसरी बात.
प्रेयर फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द किंगडम.
परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना.
नंबर थ्री,
और तीसरी बात.
आस्किंग गॉड टू मीट आवर नीड.
परमेश्वर से मांगना कि हमारी जरूरतों को पूरी करे.
नंबर फोर,
चौथी बात.
आस्किंग गॉड टू क्लींस अस फ्रॉम आवर सिन.
परमेश्वर से मांगना कि वो हमें हमारे पापों से शुद्ध कर दे.
नंबर फाइव,
पांचवी बात.
आस्किंग गॉड टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम टेम्पटेशन.
हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि वे हमें परीक्षाओं से बचाए.
When we go to prayer,
जब हम प्रार्थना करने आते हैं,
we need to learn the language of prayer.
हमें प्रार्थना की भाषा को सीखना है.
And it begins with God and His kingdom.
और वो उसके परमेश्वर और उसके राज्य के साथ हमें प्रार्थना आरंभ होनी चाहिए. परमेश्वर की आराधना,
the fellowship with God.
उसके साथ संगति,
the praise of God.
और उसकी उपासना.
Many times people come to prayer.
और कई बार लोग प्रार्थना करने आते हैं.
They say, "Oh Lord."
वो कहते हैं, हे प्रभु.
We praise you.
हम आपकी आराधना करते हैं.
Now I've got 100 things here I'd like to ask you.
और हम मेरे पास 100 चीजें जिनके बारे में मैं आपसे मांगना चाहता हूँ.
You're the holy man.
लेकिन जो पवित्र व्यक्ति है वो परमेश्वर से संगति करना मांगता है.
He is God-centered, not self-centered.
वो परमेश्वर की ओर केंद्रित है बजाय के स्वयं की ओर केंद्रित.
Certainly we should pray to God to help us.
और निश्चय कि हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि ताकि वो हमारी मदद करे.
The book of Hebrews says this.
इब्रानियों की पुस्तक ये कहती है.
Let us draw near to the throne of grace.
और हम अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक आ जाएं.
It is a throne.
वो एक सिंहासन है.
And the sovereign king sits upon the throne.
और वो सार्वभौमिक राजा उस सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ है.
But it is a throne of grace.
और वो एक अनुग्रह का सिंहासन है.
Through Jesus Christ.
यीशु मसीह के द्वारा.
Let us draw near to the throne of grace.
उस अनुग्रह के सिंहासन के नजदीक हम चलें.
That we might receive grace to help and strength in our time of need.
ताकि हम उस अनुग्रह को पा सके उसके नजदीक आने के लिए और सामर्थ्य जब हम कमजोर हैं.
Holy men,
पवित्र लोग,
live in secret prayer.
गुप्त समय में प्रार्थना में जीते हैं.
Not one minute.
एक क्षण नहीं, एक मिनट नहीं.
Not every once a week.
हफ्ते में एक बार नहीं.
They love God.
लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं.
And they need God.
और वो उन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है.
Because their self-sufficiency has been broken.
क्योंकि स्वयं में निर्भरता और काफी वर वो टूट चुका है.
And they cannot live without God.
और क्योंकि वो परमेश्वर के बिना नहीं जी सकते हैं.
They need Him.
उन्हें उसकी आवश्यकता
है.
वो उसको चाहते
they
हैं.
They hunger for Him.
उसके लिए भूखे हैं.
They thirst for Him.
उसके लिए प्यासे हैं.
And they come to him in secret.
और वो उसके पास आते हैं अकेले में गुप्त समय में.
So this is my exhortation to you.
ये मेरा आपसे प्रोत्साहन है.
If you want to grow in holiness,
अगर आप पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं,
you got to live in this book.
तो आपको इस पुस्तक में जीना है.
And you got to live on your knees.
और आपको अपने घुटनों पर जीना है.
How do we do that?
कैसे कर सकते हैं हम ये?
Let me give you several practical suggestions and then we'll close.
मैं आपको कुछ कई व्यवहारिक सुझाव दूंगा उसके बाद हम समाप्त करेंगे.
First suggestion.
पहला सुझाव.
You've got to make the knowledge of God the number one priority in your life.
आपको अपने जीवन में परमेश्वर के ज्ञान को अपना प्रथम प्राथमिकता बनाना है.
परमेश्वर इन योर हार्ट
अपने स्वयं के हृदय में परमेश्वर के ज्ञान को प्रथम प्राथमिकता बनाना है.
द नंबर वन कॉलिंग
सबसे पहली प्रथम बुलाहट
इज टू नो गॉड.
वो ये है कि हम और आप परमेश्वर को जान जाएं.
राइट दिस वर्स डाउन
इस पद को आप लिख लीजिए.
साम 27
भजन 27
वर्स 4
और चौथा पद.
What does it say?
वो क्या कहता है?
One thing I have asked from God.
एक चीज एक बात मैंने परमेश्वर से मांगी है.
One thing I will seek.
एक चीज जो मैं मांगूंगा ढूंढूंगा.
To dwell in the house of God all the days of my life.
कि परमेश्वर के भवन में घर में मैं अपने संपूर्ण जीवन के दिनों में वहां रह सकूं निवास कर सकूं.
Do two things.
और दो चीजें कर सकूं उसके बाद.
To behold His beauty.
कि उसके सुंदरता को मैं निहार सकूं.
And to inquire or to ask in His temple.
और फिर उसके मंदिर में उससे विनती कर सकूं.
You have to make a decision.
आपको एक निर्णय करना है.
You have to have a goal.
आपके सामने एक लक्ष्य होना चाहिए.
You have to have one purpose.
आपके सामने सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए.
Jesus said one thing is necessary.
यीशु मसीह ने कहा केवल एक चीज है जो जरूरी है.
David said one thing I shall seek.
और दाऊद ने कहा एक चीज है जिसे मैं खोजूंगा.
Paul said this one thing that I do.
और पौलुस ने कहा केवल एक चीज है जो मैं करता हूँ.
Holy men are men of one thing.
जो पवित्र लोग हैं वो लोग केवल एक वस्तु एक चीज एक बात के लोग होते हैं.
And that one thing is the living God.
और वो एक चीज एक वस्तु एक बात पवित्र परमेश्वर है.
Make that decision in your heart.
उस चीज को अपने हृदय में आप निर्णय कर लीजिए.
And you pray this.
और इस चीज के लिए प्रार्थना कीजिए.
Lord, before you use me.
प्रभु जी इससे पहले कि आप मुझे इस्तेमाल कीजिए.
Before I have ministry.
इससे पहले कि मेरे पास सेवकाई आई
before I have blessing,
इससे पहले मेरे पास आशीषें हो,
before I preach,
इससे पहले मैं प्रचार करूं,
before I am useful,
इससे पहले कि मैं उपयोगी हूं,
one thing,
एक चीज,
I want,
मैं चाहता हूं,
to know you,
कि मैं आपको जान
सकूं, live with you,
कि आपका जी
सकूं, to walk with you,
कि आपके साथ चल सकूं,
to fellowship with you,
आपके साथ संगति कर सकूं,
and if you don't give me any other thing,
अगर आप मुझे कोई और चीज ना भी दें,
that's one thing that I want,
केवल एक चीज है जो मैं चाहता हूं आपसे,
and if I don't have that,
अगर मेरे पास वो ना हो,
take me out of this world,
तो मुझे इस संसार से ले जाइए,
better to die and go to heaven than to not truly know God,
इससे बेहतर हो कि मैं मर जाऊं और स्वर्ग चला जाऊं बजाय कि मैं परमेश्वर को ना जानूं.
What's the first practical thing you do?
सबसे पहली व्यवहारिक चीज है क्या
make the decision,
एक निर्णय बनाइए आप,
drive the stake to the ground,
और उस बात की खूंटी जमीन पे गाड़ दीजिए,
settle the question,
और इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए,
one thing,
एक बात,
that's the first thing you have to do,
ये पहली चीज है जिसे आपको करना है,
seek first his kingdom,
सबसे पहले उसके राज्य को ढूंढो,
and his righteousness,
और उसकी धार्मिकता,
that's the first thing,
ये सबसे पहली सबसे प्रथम बात है.
Are you willing to pray this?
क्या आप ये प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं?
Lord, before you use me,
इससे पहले कि प्रभु जी आप हमें इस्तेमाल कीजिए,
we all talk about ministry,
हम सब सेवकाई के बारे में बात करते हैं,
we all have our plan,
हम सबके पास अपनी योजना है,
we want God to use us,
हम सब चाहते हैं प्रभु हमें
उपयोग करें, and we must have plan,
और हमारे पास योजना होनी चाहिए,
and we must have vision,
और हमारे पास दर्शन होना चाहिए,
and we must serve God,
और हमें परमेश्वर की सेवा करनी
है, and we must want God to use us,
निश्चय हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमें इस्तेमाल करे,
but before all of that,
लेकिन इससे पहले ये सारी चीजें हो जाए,
you gotta be a man of one thing,
हमें एक चीज का व्यक्ति पर जन बनना है.
Is that your desire?
क्या ये आपकी इच्छा है?
You have got to make that decision.
आपको ये निर्णय कर लेना है.
What did Moses say?
मूसा ने क्या कहा?
God had led them all the way through the wilderness.
परमेश्वर ने उनको पूरे जंगल में से होकर के लेके आया था.
He had revealed himself to Moses.
उसने अपने आप को मूसा के सामने दर्शन दिखा दिया था.
And then God was leading them further.
और जब परमेश्वर को और आगे लेके जा रहा था.
And what did Moses pray?
और मूसा ने क्या प्रार्थना किया?
Lord, if you don't go with us,
प्रभु यहोवा अगर आप हमारे साथ नहीं जाएंगे,
we cannot go up from this place.
तो हम इस जगह से बाहर नहीं जा सकते.
And then what did he say?
फिर उसने क्या कहा?
Show me thy glory.
मुझे अपनी महिमा दिखा दीजिए.
And if you want to be holy,
अगर आप पवित्र बनना चाहते हैं,
you got to be a man of one thing.
तो आपको एक चीज का जन बनना है.
See the glory of God in the face of Jesus Christ.
कि आप परमेश्वर की महिमा को यीशु मसीह के मुख में देखिए.
My dear preacher friend, when that happens, everything else will take care of itself.
मेरे मित्रों, जब आप इस चीज को ध्यान देते, तो बाकी सारी चीजें अपने आप अपने समय पे हो जाएंगे.
That's the first thing.
सबसे पहली बात है ये.
Make a decision.
एक निर्णय बना लीजिए, कर लीजिए.
God doesn't do another thing in my life.
अगर परमेश्वर मेरे जीवन में कुछ और करे या ना करे.
If he doesn't use me.
चाहे वो मुझे इस्तेमाल करे या ना करे.
I've got one desire.
मेरे पास सिर्फ एक ही इच्छा है.
To know him.
कि मैं उसको जान जाऊं.
And to walk with him.
उसके साथ चलूं.
And to see him.
और उसको देखूं.
And to love him.
और उसको प्रेम करूं.
When I came to China, I had lots of vision.
जब मैं चीन देश में गया तो मेरे पास बहुत सारे दर्शन थे.
Lots of plans.
बहुत सारी योजनाएं थी.
But God took all my visions.
लेकिन परमेश्वर ने मेरे सारे दर्शन लिए.
And all my plans.
और सारी योजनाएं.
And he broke them into pieces.
और उनको टुकड़ों में तोड़ दिया.
And he said this.
उसने ये कहा.
I've called you to one thing.
मैं तुमको केवल एक चीज के लिए बुलाया है.
And you don't substitute one for the other.
और तुम इस चीज को दूसरे से नहीं बदल सकते हो.
You seek me first.
सबसे पहले तुम मुझे देखो.
And you live in secret.
और तुम गुप्त जीवन व्यतीत करो.
That's the first thing.
सबसे पहली बात.
Make a decision.
एक निर्णय कर लीजिए आप लोग.
Second thing.
दूसरी बात.
Discipline and arrange your entire schedule around that decision.
अपने आप को अनुशासित करिए और अपने सारे जो समय सारणी है उसको इस निर्णय के चारों तरफ ही उसको आयोजित कीजिए.
Rearrange your schedule.
आपने जो आपका जो समय सारणी है उसको पुनः आयोजित कीजिए.
चेंज योर प्रैक्टिसेस.
आपके जो जो कार्य करने के तरीके हैं, विधियां हैं, उनको बदल दीजिए.
मेक योर टाइम विद गॉड द नंबर वन प्रायोरिटी इन योर लाइफ.
जो आपका परमेश्वर के साथ जो आपका समय है उसको अपनी प्राथमिकता बना लीजिए.
हाउ मेनी पीपल से दिस.
कितने लोग एक बात ये कहते हैं,
आई डोंट हैव टाइम टू प्रे इन सीक्रेट.
मेरे पास समय नहीं है गुप्त में प्रार्थना करने
के. पॉलस सेज टू प्रे विदाउट सीसिंग.
और पॉलस कहता है कि बिना रुके हुए प्रार्थना
करो.
और हाँ, यही निश्चय है कि हमें बिना रुके प्रार्थना करते हैं. जब हम दिन में जाते हैं,
speaking prayers to God,
परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं,
asking for help,
मदद के लिए मांगते हैं,
asking for wisdom,
और बुद्धि के लिए मांगते हैं,
asking for strength,
और सामर्थ्य के लिए मांगते हैं.
But listen, my friend,
लेकिन मेरे मित्रों सुनिए,
if you don't live with God in secret,
अगर आप अकेले में एकांत में परमेश्वर के साथ नहीं जिएंगे,
you'll not truly know God,
तो आप वास्तविक रीति से प्रभु को नहीं जान सकते.
I want to get to know my wife,
अगर मैं अपनी पत्नी को जानना चाहता हूँ,
I send everyone out of the house,
मैं सबको अपने घर से बाहर कर देता हूँ,
and I shut the door,
और मैं दरवाजा बंद कर लेता हूँ,
and I have fellowship with my wife,
और मैं अपनी पत्नी के साथ संगति करता हूँ.
If you want to know God,
अगर आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं,
rearrange your schedule,
अपना जो समय है उसको आप पुनः दूसरी सही तरीके से आयोजित करिए.
Some of you go to bed too late,
आप में से कुछ लोग जो बिस्तर में बहुत देर से आते सोने के.
Some of you get up too late,
कुछ आप में से कुछ लोग जो बहुत देर में उठते हैं.
Rearrange your schedule,
अपना समय सारणी बदल दीजिए.
You to go to bed at 12 or 1 o'clock, you cannot get up at 6 or 7 o'clock.
अगर आप 12 या 1 बजे सोने जाएंगे तो आप 6 बजे नहीं उठ सकते.
Especially younger men,
और खासतौर से जो जवान लड़के लोग
हैं, they need to sleep 7 or 8 hours,
उन लोगों को 7 या 8 घंटे सोने की आवश्यकता है.
If you don't go to bed early enough,
अगर आप जल्दी सोने नहीं जाएंगे,
you won't get up to see God,
तो आप सुबह नहीं उठ करके प्रभु को खोजेंगे. आप मुसलमानों को सुबह सुनते हैं प्रार्थना करते हुए. क्यों प्रार्थना करते हैं? क्योंकि वो लोग व्यवस्था के आधार पर, नियम के
आधार पर,
क्योंकि वो लोग जन्नत की ओर जा रहे हैं अपना रास्ता कमाने के लिए. लेकिन हम नियम के आधीन नहीं हैं, हम अनुग्रह के आधीन हैं. क्यों वो लोग प्रार्थना करते हैं? क्योंकि वो लोग व्यवस्था के आधीन हैं, कार्यों के द्वारा. लेकिन हम तो अनुग्रह के आधीन हैं.
We should love God.
हमें परमेश्वर से प्रेम करना है.
Not because we ought to.
इसलिए नहीं क्योंकि हमें करना ही करना है.
But because we want to.
क्योंकि हम करना चाहते हैं.
Not because we're earning our salvation.
इसलिए नहीं क्योंकि हम अपना उद्धार
कमा रहे हैं. Enjoying our salvation.
क्योंकि हम अपने उद्धार का आनंद उठा रहे हैं.
Lazy preachers.
आलसी प्रचारकों या आलसी भाई बहनों.
Are the curse of the church.
कलीसिया के लिए एक श्राप का कारण है.
Make a priority.
एक प्राथमिकता बना लीजिए.
Number two.
दूसरी बात.
Rearrange your schedule.
अपना जो समय सारणी है उसको पुनः सही तरीके से आयोजित कर लीजिए.
Number three.
तीसरी बात.
Discipline yourself to pay the price.
अपने आप को अनुशासित कीजिए कि आप कीमत चुका सकें.
First Timothy.
पहला तीमोथियुस.
Chapter 4.
चौथा अध्याय.
Verse 7.
सातवां पद.
Discipline yourself for the purpose of godliness.
परमेश्वर के कार्यों के लिए अपने आप को अनुशासित करो.
We mentioned that verse this afternoon.
हमने आज की दोपहर में भी उस पद को बताया था.
Look at 1 Corinthians.
Corinthians. पहला कुरिन्थियों.
Chapter 1.
पहला अध्याय.
You can have a good desire.
आपके अंदर एक अच्छी मनसा इच्छा हो सकती है.
You can rearrange your schedule.
और हो सकता है कि आपने समय सारणी को पुनः आयोजित कर भी लें.
But that's not enough.
लेकिन वो काफी नहीं है.
Number three.
इसी बात.
You need to discipline yourself.
आपको अपने आप को निशासित करने की आवश्यकता है.
By the power of God.
परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा.
And get up and get out of bed.
और उठ करके अपने बिस्तर से बाहर निकलिए.
And 1 Corinthians.
पहला कुरिन्थियों.
Chapter 9.
नवा अध्याय.
Paul uses the illustration of the athlete.
Paulus यहाँ पे एक जो दौड़ने वाला है उसकी उसका उदाहरण देता है.
Very familiar illustration.
बहुत ही जाना पहचाना उदाहरण है ये.
Verse 24.
24 पद.
You not know that those who run in a race all only one gets the prize?
क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो कई लोग दौड़ते हैं लेकिन एक ही को पुरस्कार मिलता है?
Run in such a way that you may win.
तुम इस तरह से दौड़ो कि तुम जीत सको.
Everyone who competes in the games exercises self-control and all things.
और जो कोई प्रतियोगिता में भाग लेते हैं वो हर चीजों में संयम रखते हैं.
They do it to receive a perishable wreath.
वो तो नष्ट होने वाले मुकुट की प्राप्ति के लिए करते हैं.
We an imperishable one.
लेकिन हम तो ना नाश होने वाले को प्राप्त करते हैं.
Verse 26. I run in such a way as not without aim.
मैं इस तरह से दौड़ता हूँ लक्ष्यहीन तरीके से नहीं.
I have a clear purpose, he said.
लेकिन मेरे सामने एक साफ उद्देश्य है.
I have a goal.
मेरे सामने एक लक्ष्य है.
I want to win the prize.
मैं उस इनाम को जीतना चाहता हूँ.
Notice what he said.
देखिए ध्यान जी क्या कहते हैं.
My fox is not beating the air.
मैं हवाई मुक्केबाजी नहीं करता हूँ.
I know what I want.
मुझे मालूम है कि मुझे क्या चाहिए.
I'm not swinging at the wind.
मैं हवा में नहीं मुक्के मार रहा हूँ.
Verse
27.
I discipline my body.
मैं अपनी यात्रा को देह को वश में रखता हूँ.
Make it my slave.
मैं उसको अपने वश में रखता हूँ.
So that after I preach to others, I may not be disqualified.
कहीं ऐसा ना हो कि मैं औरों को प्रचार करके स्वयं अयोग्य ठहरूं.
That means he would be rejected.
इसका मतलब यह है कि उसका तिरस्कार हो सकता है. वो इनाम नहीं जीत सकता है.
अभी
लंदन में हाल ही में ओलंपिक्स हुए थे. और इन लोगों ने अपने संपूर्ण जीवन व्यतीत कर दिए केवल एक लक्ष्य के लिए. उन्हें वो जो मेडल है वो चाहिए. और उसके लिए अपने आप को उन्होंने त्याग किया. और बाकी लोग बाहर खेल कूद रहे
थे.
वो जल्दी उठ करके कसरत कर रहे थे. बाकी लोग आइसक्रीम खा रहे हैं या कोक पी रहे हैं.
He's eating meat and potatoes.
लेकिन वो केवल आलू और मीट खा रहा है.
Other people stay up late at night.
बाकी लोग देर रात तक जगे हुए.
He goes to bed and gets sleep.
लेकिन वो रात में जाकर के नींद पूरी करता नहीं.
He's a man of one thing.
वो एक ही चीज का व्यक्ति है.
He wants the medal.
उसको वो मेडल चाहिए.
And if you want to be holy,
यदि आप पवित्र बनना चाहते हैं,
you must discipline yourself.
तो आपको अपने आप को अनुशासित करना पड़ेगा.
You must be willing to pay the price.
आपको कीमत चुकाने के तैयार होना है.
You must be willing to sweat.
आपको पसीना बहाने के लिए तैयार होना है.
You must be willing to sacrifice.
आपको त्याग करने के लिए तैयार होना है.
This is not a day and an age of sacrifice.
और ये जो आज का युग है और जो समय है वो त्याग की बातें नहीं की जाती.
And the language of self-discipline is not acceptable to many.
और स्वयं के अनुशासन की भाषा जो है आजकल बहुत लोगों को ग्रहण योग्य नहीं है.
The language of self-denial is not acceptable to people.
और स्वयं को नकारने की भाषा आजकल कई लोगों के लिए ग्रहण योग्य की बात नहीं है.
One of the greatest theologians in the history of Christianity.
और मसीहत के मसीही इतिहास में एक बहुत सबसे बड़ा
John Calvin
नाम का
famous book, The Institutes of Christian Religion.
और उसने एक प्रसिद्ध किताब लिखी है, The Institutes of Christian Religion.
He said this.
उसने ये कहा,
The heart of the Christian life is self-denial.
और मसीही जीवन का जो मुख्य केंद्र है वो स्वयं को नकारना है.
Have you ever read that section in John Calvin?
क्या आपने जॉन कैल्विन की उस हिस्से को पढ़ा है?
Why did God use John Calvin?
क्यों परमेश्वर ने जॉन कैल्विन को इस्तेमाल किया?
That man paid a price.
उस प्रभु के सेवक ने एक कीमत चुकाई थी.
He sacrificed.
उसने त्याग किया था.
He suffered.
उसने सहा.
He was willing to pray.
वो प्रार्थना करने के लिए तैयार था.
He lived in this book.
वो इस किताब में जिया.
And he blessed the church.
और उसने कलीसिया को आशीषित किया.
Number one,
पहली बात,
have a priority.
एक प्राथमिकता रखिए.
Number two,
दूसरी बात,
rearrange your schedule.
आप अपने जीवन के को सब कुछ सही. और तीसरी बात, अपने आप को अनुशासित कीजिए कि आप प्रार्थना में जाएं, समय व्यतीत करें.
नंबर फोर,
चौथी बात,
यूज द वर्ड ऑफ गॉड टू लीड यू इन प्रेयर.
और परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करिए कि आपको वो प्रार्थना में अगुवाई कर सके.
When I was a young man,
जब मैं जवान व्यक्ति था,
I didn't know how to pray.
मुझे नहीं मालूम मैं कैसे प्रार्थना करूं.
I wanted to praise God.
मैं परमेश्वर की स्तुति करना चाहता था.
An old preacher said this.
तो एक पुराने प्रचारक ने ये कहा, अपनी बाइबल खोलो,
get on your knees,
अपने घुटने पे हो जाओ,
turn to the book of Psalms,
और भजन संहिता में जाओ,
begin to pray those Psalms,
और उन भजनों को प्रार्थना करना शुरू करो.
Not just mindlessly repeating them,
केवल बिना दिमाग के बिना सोचे समय केवल उसको दोहराओ
नहीं, but using your own words,
लेकिन उनको अपने खुद के शब्दों में बोलो.
Expand the Psalms,
और उस भजन को और भी बढ़ा दो.
Let the word move your soul,
और उन शब्दों को अपने आप को छूने दो. अपने
every morning when I get up,
प्रत्येक सुबह जब मैं उठता हूँ, जब मैं रखा हूँ.
My heart is cold.
मेरा हृदय ठंडा है. मेरे सर में दर्द है.
I don't want to get up.
मैं बाहर उठना नहीं चाहता.
I get up.
लेकिन मैं उठता हूँ.
Get on my knees.
मैं अपने घुटने पे जाता
हूँ. My mind is wandering around.
मेरा मस्तिष्क इधर उधर जा
रहा है. I try to begin to pray.
मैं प्रार्थना करने आराम करता
हूँ. It's like trying to start up a car on a cold morning.
जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ उस समान है ठंडी सुबह जब आप अपनी कार का गाड़ी शुरुआत करने की प्रयास करते हैं.
You have to show up.
आपको वहां पे जाना है. आपको उपस्थित होना है.
You have to go there.
आपको वहां पे जाना है.
And if your heart is cold,
अगर आपका हृदय ठंडा है,
open the book.
तो बाइबल खोलिए.
Get on your knees.
अपने घुटनों पे जाइए.
Do you get on your knees?
क्या आप अपने घुटनों पे जाते हैं?
The psalmist says this.
भजनकार ये कहता है.
Come, let us worship and bow down.
आओ हम उसकी आराधना करें. अपने घुटनों पे झुकें.
David, Paul says this.
पौलुस ये कहता है.
For this reason, I bow my knees before the Father.
इस कारणवश मैं पिता के सामने अपने घुटनों को टेकता हूँ.
When a man gets on his knees,
जब एक व्यक्ति अपने घुटनों पे होता है,
what does it show?
तो क्या दर्शाता है?
He's humbling himself.
वो अपने आप को नम्र कर रहा है.
He plans to stay there for a while.
और वो अपने आप को कुछ समय वहाँ रहने की योजना बना रहा है.
He knows who God is.
उसको मालूम है कि परमेश्वर कौन है.
He knows who he is.
उसको मालूम है कि वो कौन है.
If you want to grow in holiness,
अगर आप पवित्रता में बढ़ना चाहते हैं,
have a priority.
एक प्राथमिकता रखिए.
Rearrange your schedule.
अपना जो पूरा समय सारणी है उसको पुनः नियोजित कीजिए.
Discipline yourself.
अपने आप को अनुशासित कीजिए.
Show up.
वहाँ पे जाइए दिखाइए.
And ask for the help of the Spirit of God.
और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से मदद मांगिए.
David Brainerd.
और डेविड ब्रेनर्ड
फेमस मिशनरी टू अमेरिका.
अमेरिका में एक मिशनरी थे. बहुत ही प्रसिद्ध प्रभु के सेवक थे. वो प्रार्थना के पुरुष थे.
He got up early in the morning one day.
एक दिन बहुत सुबह उठे वो.
He began to pray.
उसने प्रार्थना करना आरंभ किया.
His heart was cold.
उनका हृदय वो ठंडा था.
No help.
कुछ सहायता नहीं मिली.
He prayed all morning.
वो पूरी सुबह प्रार्थना करते
रहे. His heart was dead.
उनका हृदय मरा हुआ था.
No strength.
कोई सामर्थ नहीं थी.
He didn't quit.
उन्होंने छोड़ नहीं दिया.
He prayed in the afternoon.
और पूरे दिन तक प्रार्थना करते रहे.
No strength.
कोई सामर्थ नहीं थी.
He came right before dark.
फिर रात में अंधेरे के समय उन्होंने प्रार्थना की.
And he said this.
उसने ये कहा.
Right before the sun went down.
इससे पहले कि सूरज नीचे जाए.
God came.
परमेश्वर आया.
Most men would not stay that long.
ज्यादातर लोग उतनी देर नहीं रुकते प्रार्थना के लिए. वो लोग छोड़ देते प्रार्थना करना.
We have other things to do.
क्योंकि हमारे पास कई और चीजें जिनको हम करना
you
चाहते हैं.
Stay in prayer all day unless it's a special day of prayer.
और जब तक विशेष दिन प्रार्थना करनी होता तब तक हम प्रार्थना में नहीं समय व्यतीत करते. लेकिन भाई मेरी बात तो सुनिए आप.
लिव इन दिस बुक.
इस पुस्तक में आप जिए.
लिव ऑन योर नीज.
अपने घुटनों पे जिए.
सीक द फेस ऑफ गॉड.
प्रभु के मुख को ढूंढिए.
एंड गॉड विल मेक यू होली.
और फिर परमेश्वर आपको पवित्र बनाएगा.
एंड गॉड विल यूज यू.
और फिर परमेश्वर आपको उपयोग करेगा. आई एम प्रार्थना करें.